इन सारी आयात में से एक दो बातें जो हमें दिखती हैं, पहली बात तो इसमें आप देखिए कि या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, यहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नेमतों की याद दहानी के बाद कहा कि अल्लाह को याद करो। लेकिन सूरत बकरा ही के अंदर दूसरे पारे में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को क्या कहा, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, यानी तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। इस दोनों का एक बड़ा प्यारा सा फ़र्क पेश किया गया, रूहुल मानी ये किताब है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को जब नेमतों की तस्कीर की बात की तो बराह रास्त कह दिया फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। और ये भी सूरत बकरा की आयत है, आप नंबर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, आयत नंबर 152 है सूरत बकरा, फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, बस मुझे याद करो मैं तुमको याद करूँगा और मेरा शुक्र अदा करो और कुफर ना करो। तो इसमें मुफस्सरीन कहते हैं कि देखिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को जब कहा कि तुम मुझे याद रखो तो बराह रास कह दिया कि बस याद रखो, लेकिन बनी इसराइल को जब कहा तो साथ ही नेमतों की तस्कीर की। इससे पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा से अल्लाह ताला को इस बात की उम्मीद थी कि नेमतों की याद दहानी के बग़ैर ही अल्लाह को याद रखेंगे। यानी एक छोटा सा लतीफ़ सा नुक्ता था, अगर हम याद रख सकें कि अल्लाह ताला ने बग़ैर नेमतों के तस्करे के उम्मत मुस्लिम को कहा कि तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर दूसरी बात जो आयत में थी कि औफू बिअहदी व ऊफी बिअहदिकुम, इन दोनों बातों से वादे की तकमील या वादा पूरा करना इसकी अहमियत समझ आती है। सूरत मायदा की पहली ही आयत में हम पढ़ेंगे कि औफू बिल उकूद, के ईमान वालों वादों को पूरा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी रिवायात से क़यामत के दिन वादा खिलाफी करने वालों को जो सज़ाएं मिलेंगी उसका तذکرہ मिलता है। और यहाँ याद रखिए कि आज उम्मत मुस्लिमा का मसला क्या बन गया कि कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई, वादा करते हैं और भूल जाते हैं, किसी को उम्मीद दिलाते हैं और छोड़ देते हैं। हालांकि सही मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे अगले और पिछलों को जमा करेगा और अहद शिकनी करने वालों पर एक झंडा बतौर अलामत के लगा दिया जाएगा। जितनी बड़ी अहद शिकनी की होगी उतना ही झंडा बुलंद होगा और इस तरह इनको मैदाने महशर में रुस्वा और शर्मिंदा किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें अपनी कमिटमेंट्स को निभाने वाला बना दे, अपने से भी जो वादे करते हैं वो भी काबिले तवज्जो होती हैं, लोगों से भी और अल्लाह ताला से, और रूल्स को फॉलो करना ये भी एक कमिटमेंट होता है। फिर अगली चीज़ इसमें आप देखिए अव्वल काफिरिन बिह लफ्ज़ को गौर से देखेंगे अगर हम, तो पहले काफिर ना बनना। इस लफ्ज़ के ऊपर अगर गौर करें तो एक बात पता चलती है कि जब कोई बंदा किसी काम की रस्म डाल देता है तो अगर दूसरे लोग उसको देख के वो काम करते हैं तो सबका गुनाह उसी के ज़िम्मे होगा। तो इससे हमारे लिए अमल की बात क्या निकलती है कि अगर किसी गुनाह में हम पहल करके शुरू करते हैं, यानी हम पहले किसी गुनाह की आदत डालते हैं, कोई फैशन, कोई रस्म, कोई रिवाज, और हमें देख के बाद में जितने लोग करेंगे तो हम भी उसके अंदर ज़िम्मेदार होंगे। फिर एक और अमल की बात इसमें वला तश्तरू बी आयाति समनन कलीला से है। गो के ये आयत हमने टेक्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह समझ ली कि ये यहूद के उलमा के लिए थी, लेकिन इस पे फिर ये सवाल उठता है कि क्या दीन की तालीम पर उजरत ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती, क्योंकि ला तश्तरू बी आयाति समनन कलीलन को जब लोग आम तौर पे समझते हैं यानी टैक्स के बगैर, तो इससे यही मतलब निकलता है कि मेरी आयतों के बदले कीमत ना लो। तो इस पे बहरहाल एक मसला उठता है, वो लंबा मसला है, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है कि असल में दीनी मुबल्लिगीन जो होते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से लेकर करीब के दौर तक उनको हुकूमत से वजीफ़ा मिलता था। जो लोग फुल टाइम दीन का काम करते थे उनके खर्च अखराजात हुकूमत पूरे करती थी, जिसकी वजह से दो फायदे होते थे, एक तो ये थे कि वो यकसू होकर अपना काम करते थे और उनको माली मौशी फिक्र नहीं होती थी, और दूसरी ये थी कि हुक्मरान जो होते थे जो अपने दौर के सही अकीदा लोग थे उनका फिर उनके काम पे कंट्रोल भी होता था। लेकिन बरेसगीर पाक व हिंद के अंदर ये चीज़ शुरू हुई कि एक वक्त ऐसा आया मुसलमानों की हिस्ट्री में कि एक ऐसा दौर था कि जब हुकूमत ने अपनी सरकर्दगी में कह लीजिए या अपनी जेर सरपरस्ती इन इदारों को ना लिया और दीनी इदारों की टेक केयर छोड़ दी, नतीजा क्या निकला कि कि जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपने अपने इदारे बनाने शुरू कर दिए, और उसके बाद तो ज़्यादा ही बात फैल गई ना, इतनी मुख्तलिफ किस्म की आपको मस्जिदें और इतने मुख्तलिफ तबका फ़िक्र नज़र आने लगे। और दूसरी बात ये हुई कि लोगों ने दीन को पेशा बना लिया। आज इस सारी बात का खुलासा क्या होगा कि अगर तो कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसको तो इस पे नहीं लेनी चाहिए। जैसे लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान सिखाते हैं, नाजरा सिखाते हैं, अब आप देखिए कि मर्द हैं, उनके ज़िम्मे माश है, उनको घरदारी करनी है, अगर वो ये काम फुल टाइम नहीं करते तो फिर इस काम पे तवज्जो नहीं दी जाती। तो बहरहाल कोई अगर नहीं लेता तो उसके लिए इंशाल्लाह वो वक्त भी सदका होगा, लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ले लेता है, तो ये उस तरह से हराम नहीं है जिस तरह से लोग इसको हराम समझते हैं। फिर दूसरी बात, इसमें एक और जो सरे राह है और वो तो बहुत ही बुरी होगी कि लोगों को जमा करके कुरान पढ़ाया जाता है मस्जिदों से बच्चों को बुलवा के, और बाद में फिर उसके ऊपर पैसे दिए जाते हैं या कीमत दी जाती है, ये तो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। इसके ऊपर यानी फतवा मौजूद है कि लोगों को जमा करके कुरान पढ़ा के फिर उनको पैसे देना ये बिदअत है। अरबी की किताब है इसलिए हवाला देने का फ़ायदा नहीं होगा। फिर अगली एक और चीज़ इन आयतों से जो हमारे लिए अमल की निकलती है कि हक बात को छुपाना और खलत मलत करना हराम है। कि बाज़ दफ़ा लोग हक को छुपाने के लिए दूसरों के सामने उनके रोप में आकर उनके सामने बातें ऐसी पेश कर देते हैं कि जो असल में नहीं होती। इसमें एक बहुत ही प्यारा वाक्या भी आता है, तवालत की वजह से आपके सामने नहीं रखती, लेकिन खुलासा सिर्फ उसका यही है कि एक सहाबी थे और अपने वक्त के खलीफा के सामने खड़े थे और उसके हर सवाल के जवाब में दो टोक जवाब दे रहे थे। ना उनको उस खलीफा की खिलाफत का कोई रोब था और ना उनको ये डर था कि मैं जो तनकीद कर रहा हूँ वो उसके जो बदले में मुझे बुरा कहेंगे। तो जब आखिर में वो इस महफिल से फारिग हुए और बादशाह जो भी था वो भी उनको आजमा रहा था असल में कि ये मुझे देख के बात तो नहीं बदल लेते, तो उन्होंने उनको 100 अशरफियाँ इनाम के तौर पर देना चाहिए, और उन सहाबी ने वो तोहफ़ा जो था या अशरफियाँ थी वो वापस भेजी और कहा कि अगर ये मैंने जो आपको इल्म दिखाया या दीन की बातें बताई उसके बदले में तो मैं इसको अपने लिए जायज़ करार नहीं देता। और दूसरी बात है कि अगर आप मुझे तोहफे के तौर पर दे रहे हैं तो इस शहर में और बहुत सारे इल्म वाले हैं, पहले उनको भी तोहफे दें फिर मैं लूँगा। यानी इस तरह का बहुत ही प्यारा वाक्य है, किसी मौके पे आपको पूरी सनद के साथ सुना दूंगी। तो इससे पता चलता है कि दीन की बात करने वालों को दो टोक बात करनी चाहिए, बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, अक्खड़ मिजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए बातें नहीं बदलनी चाहिए। अब हम देखेंगे आयत नंबर 43 को। व अकीमु सलात व आतु ज़कात व रकउ मअ राकीईन, और कायम करो नमाज और दिया करो ज़कात और झुको नमाज में झुकने वालों के साथ। इससे पीछे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को 3 आयतों में ईमान और अकीदे के मुतलिक बातें बताई जो हम देख चुके। अब यहाँ से लेके अगली 4 आयतों में रुकू के एंड तक आमाले सालेह की बात है कि आप कुछ अमल सवाले भी करो। इससे पता चलता है कि ईमान लाने के बाद अमल सवाले भी लाजमी होते हैं। जब तक इंसान अमल ना करे उस वक़्त तक उसका ईमान भी उसको किफ़ायत नहीं करता। और आमाल में सबसे पहले जो चीज़ अल्लाह ताला ने पेश की वो क्या है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। यहूद के ऊपर अपने वक्त में नमाज फ़र्ज़ थी, लेकिन जिस तरह बाकी चीज़ों को उन्होंने छोड़ा इस तरह उन्होंने नमाज़ों को भी छोड़ दिया, उसकी कैफियत बदल दी। नमाज़ पढ़ते थे तो भी वो ऐसी थी कि जैसी नहीं पढ़ते थे, और पीछे चूँकि हमने अभी देखा कि उनके दीनी तबके में ये बिगाड़ पैदा हो चुका था कि दुनिया का माल कमाने के लिए वो अल्लाह के दीन को बदलने के लिए तैयार हो चुके थे। तो ऐसे तमाम लोग जो अपने ऊपर काबू ना पा सकें, ऐसे लोगों के इस फेल को बदलने के लिए अल्लाह ताला ने इन आयतों में 2 नुस्खे दिए हैं, और वो क्या हैं हम देखेंगे। व अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। पहली चीज़ नमाज कायम करनी है। कुरान पाक में नमाज के लिए बहुत ही कम एक आध दफ़ा के अलावा हर जगह नमाज पढ़ने की बजाय नमाज कायम करने का हुक्म है। पढ़ने के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है करा, इकरा, यकराउन, करातु, मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ ये नहीं आया यकरउ सलात, नमाज पढ़ो, या यतलून सलात, नमाज की तिलावत करो, ये नहीं आया। अकीमु, कायम करने के अंदर लफ्ज़ वही है जो स्टेबल करना, किसी चीज़ को कायम करना, सीधा रखना मुराद है। यानी नमाज़ों को वैसे ही पढ़ो जैसे कि पढ़ने का हुक्म दिया, एक इसका मतलब ये है। वक्त पे पढ़ो, सुन्नत तरीके से पढ़ो, फिर कीमो सलाद में एक और चीज़ क्या आती है कि नमाज पढ़ने के बाद वो सोसाइटी बननी चाहिए कि जिसको देखकर लगे कि ये नमाज़ें पढ़ने वाले हैं। ये नहीं कि मस्जिद में आए तो हाजी साहब, नमाजी साहब, और जब कारोबार में आए तो झूठ और सच और मिलावट और झूठी कस्में, ये मुराद नहीं है। नमाज का एक असर अल्लाह ताला ने हमें बताया, सूरत नमल है गालिबन, 21वें पारे की पहली आयत है, सूरत का नाम चेक कर लिया जा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नस सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। ये नमाज के कायम करने का असर होता है कि जो बंदा नमाजी होता है फिर उसका दिल बेहयाई और मुनकर पे नहीं लगता। आज हम लोगों को नमाज पढ़ता हुआ देखें और साथ ही साथ बेहयाई और बुराई के कामों में भी देखें तो इसमें आप कसूर नमाज का नहीं कहेंगे, बल्कि असल बात यह है कि इन लोगों ने नमाज पढ़ी तो है लेकिन नमाज को कायम नहीं किया। एक इंसान के दिल में इसका बहुत ज़्यादा शौक़ होना चाहिए कि जो नमाज़ मैं पढूं वो ऐसी नमाज हो कि जो कबूल भी हो। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट उसके पास जाता है तो वो खोलता है, तो जैसा अच्छा गिफ्ट होता है उतनी ज़्यादा खुशी होती है। हम नमाज़ पढ़ के जब भेजते हैं तो अल्लाह ताला के पास वो पहुंचती है। अच्छी नमाज होगी तो वो हमारे और अल्लाह के ताल्लुक़ को बेहतर करेगी, और बुरी होगी तो वो उसको बुरा कर देगी। तो लिहाजा नमाज के बारे में इंसान को बहुत ज़रूरत है बात करने की। साथ ही कहा वा आतुस ज़का, और ज़कात अदा करो। तो बात का खुलासा क्या था कि नमाज ऐसी ना हो कि दीन गिर जाए। नमाजें जब शौक़ से पढ़ी जाती हैं तो उसका असर इंसान के ऊपर आता है। फिर दूसरा अमल वा आतुस ज़का, ज़कात दो। ज़कात का मानी हमने देखा था पाक करना और बढ़ाना। शरीयत में माल के उस हिस्से को ज़कात कहा जाता है जो 100 में से 2.5, यानी 100 रुपये में से 2.5 रुपये अल्लाह के रास्ते में देना हर साल के पूरा होने के बाद, इसको ज़कात कहते हैं। इसकी बहुत सारी तफसीलात सूरह तौबा में आएंगी, किसको दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, जो नहीं देते या जो ज़कात नहीं देते कैसे उनका माल गंजे सांप की तरह कल क़यामत के दिन उनको डसेगा। लेकिन यहाँ इसको बनी इसराइल ही के टैक्स में रखें तो बात ज़्यादा समझ में आएगी कि यहाँ देखिए कि खिताब चूँकि बनी इसराइल को था तो उस वक्त उनकी दौर में नमाज और ज़कात थी। आज यहाँ से नहीं पता चल रहा लेकिन हमने अभी इब्तदा में जो आयत देखी थी उसी में आपको मिलेगा। सूरत मायदा की आयत नंबर 12 को अगर आप नोट कर लें तो उसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि वक़ाल अल्लाहु इन्नी माकुम लाइन अकम तुमुस्सला तवातई तुमुस्ज़का, कि मेरी मदद तुम्हारे साथ रहेगी जब तक कि तुम नमाजें अदा करोगे और ज़कात दोगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि बनी इसराइल में भी नमाज फ़र्ज़ थी। हाँ, उसकी कैफियत और कितनी रकतें कब पढ़ी जाएं ये फ़र्क थी, और हर दीन में नमाज फ़र्ज़ रही है। साथ ही कहा वरकाउ मर राकेइन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। रुकू का लुग़वी माना झुकना होता है लेकिन यहाँ इससे मुराद नमाज है। क्यों? कि रुकू नमाज का लाजिम हिस्सा है, रुकू के बग़ैर नमाज नहीं होती। जिसने रुकू छोड़ दिया उसने रकत छोड़ दी, तो लिहाजा नमाज पढ़ने के साथ रुकू का स्पेशल इनको हुक्म क्यों दिया गया? इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक वजह यह है कि यहूद की नमाज में सजदा तो था लेकिन रुकू नहीं था इनकी नमाजों में, तो अल्लाह ताला ने यहाँ ख़ास तौर पे अब इन्हें कहा कि इस्लामी तरीके से नमाज पढ़ो। और दूसरा राकेईन से मुराद जहाँ सहाबे कराम भी लिए गए, उम्मते मुस्लिमा। यहूद को इसमें दावत दी जा रही है कि तुम उम्मते मुस्लिमा के साथ शामिल हो जाओ यानी इस्लाम कबूल कर लो। तो दोनों मानी दुरुस्त हैं कि इनको रुकू का हुक्म भी दिया गया और उम्मते मुस्लिमा में शामिल होने की दावत भी दी गई। इस एक आयत से हमें जो बातें साइड से पता चलती हैं उसको देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली आयत को भी साथ देखेंगे। पहली बात है कि नमाज बंदे की अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है। आप कहते हैं कि नमाज क्यों पढ़ें? अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इसलिए पढ़ो कि मेरे और तुम्हारे अहद की तजदीद होती रहे, ताल्लुक़ जुड़ता रहे। जिस दोस्त या सहेली के साथ ताल्लुक़ कायम रहता है उसको कहे बगाहे मिलते रहते हैं। आप देखते हैं कि जब कुछ लोगों तक कुछ अरसे तक हम उनसे ना मिलें तो ताल्लुकात फीके होने लगते हैं, फिर झिझक पड़ने लगती है, खौफ आता है कि पता नहीं अब जाएंगे तो पता नहीं घर पे होंगे नहीं, और बेतकल्लुफ़ी कम होती है। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे का उसके साथ ताल्लुक नया रहे। दिन में 5 बार अल्लाह ताला के सामने या का नाबुदू व या का नस्ताइन की बात करके एक बंदा अपने आप को अल्लाह का बंदा ही समझे और उसके अंदर उसको कोई कमी ना आए। फिर इसी तरह दूसरी बात भी इसमें ये भी समझ में आती है कि जो बंदा ये चाहता है ना कि अल्लाह ताला के दीन को सही तरह से समझ सके, तो उसको रहनुमाई अल्लाह से लेनी होती है। एक रहनुमाई वो है जो किताब से मिल जाती है कुरान के अहकामात की सूरत में, लेकिन एक वो रहनुमाई होती है जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के नतीजे में मिलती है, बदलते हुए हालात, वक्त, ज़रूरियात, और उसके लिए भी नमाज एक बेहतरीन काम करती है। और कुरान पाक में ये मिजाज कई जगह है कि कई दफ़ा नमाज की जगह सिर्फ कुरान अल-फज्र कहकर सूरह बनी इसराइल में फ़जर की नमाज़ मुराद ली गई है। फिर इसी तरह एक जगह दूसरे पारे के बिल्कुल पहले ही रुकू में ईमान का लफ्ज़ जो है वो नमाज के बदले में बोला गया, तो जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। यहाँ रुकू क्या है? नमाज का जुज़ है, लेकिन मुराद इससे कुल यानी नमाज है। तो ये बहुत जगह हम देखेंगे। फिर इससे एक और चीज़ जो साइड से मिलती है वो जमात की नमाज का इशारा है, वरकउ मा राकेइन। गो के पीछे अकीम उस्सलात में बात हो गई थी, लेकिन मा राकेइन से जमात की नमाज का इशारा भी मिलता है। बनी इसराइल को अगर ये हुक्म था तो आज उम्मत मुस्लिमा को तो नमाज जमात से पढ़ने का और ज़्यादा हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी रिवायतें तवातर के ज़रिए मिलती हैं कि वो मर्द जिसके कानों में अजान की आवाज़ पहुंच जाए या कोई जो मस्जिद में मौजूद है और अजान की आवाज़ सुन ली, उसके बाद जमात की या मस्जिद की नमाज उस पर लाजिम है। बहुत तवील टॉपिक है, चूँकि आप सुनने वाली ज़्यादा ख़वातीन हैं, तो इस पर इंशाल्लाह हम सूरत आले इमरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के तनाजुर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मुझे डर ये लग रहा है कि अगर मैंने आपको सारी रिवायतें जमात की नमाज़ की बता दी तो आज जाते ही आप तो अपने मर्दों पर पड़ जाएंगे और कह देंगे कि बस आप तो आज के बाद जमात से ही पढ़ें और दिस एंड दैट। तो हिकमत के साथ बात करने की ज़रूरत है। कुरान आप पढ़ रही हैं, वो नहीं पढ़ रहे। दिल आपके अंदर ईमान बढ़ना चाहिए, अमल आपका बेहतर होना चाहिए, दूसरों का नहीं। क्योंकि जब हम शुरू में बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, तनकीद करने लगते हैं और ऐसी बातें सुन सुन के जाके घर वालों का जीना धोबर करते हैं, तो फिर वो बात सफ़ा हमें आने से रोक भी लेते हैं। लेकिन ये जहन में रखिए कि नमाज की हाँ रग़बत दिलाना चाहें तो ये सुना सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज जो जमात से पढ़ी जाए तन्हा पढ़ी हुई नमाज से 27 गुना बेहतर है। तो आप इसको प्यारे तरीके से कह सकती हैं, कैसे? आप एक नमाज जो पढ़ रहे हैं इसको मस्जिद में पढ़ लें तो 27 हो जाएंगी। हाँ, अच्छे रंग में तबलीग करें ना तो लोगों को फ़ायदा होता है, वो समझते हैं कि इसमें हमारा फ़ायदा है। और अगर हम ऐसी बातें सुनाते हैं कि आपकी हुई नहीं और आपकी कबूल नहीं, तो फिर बाज़ दफ़ाओं से रिएक्शन भी हो जाता है। लेकिन जिसको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह वो फिर कभी भी नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद अगली आयत को देखते हैं, फरमाया अता मुरून अन्नास बिल बिर्री, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, व तंसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो, वान तुम तत्लून अल किताब, हालांकि तुम तो खुद किताब को पढ़ते हो, अफला ताकिलून, क्या फिर अकल नहीं रखते, समझ नहीं रखते। इस आयत के पीछे एक ख़ास वाक़या है या एक ख़ास तनाजुर है जिसके वजह से हम इस बात को समझेंगे। वही बिल्कुल आप मदीना ही के माहौल में रहें, अभी आप यहाँ वापस ना आएं जब तक ये रुकू पूरा ना हो जाए, ताकि आप इसको बिल्कुल सही तरीके से समझ सकें। उलमा यहूद, जैसा कि हम वजाहत में शुरू में देख चुके कि उनको पता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, इस्लाम सच्चा दीन है, ये वही है जिसकी दावत दी गई थी, लेकिन खुद मुसलमान नहीं हुए। वजाहत में हम देख चुके उसके पीछे अंदर की कुछ खराबियां थीं, लेकिन होता क्या था कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में से जब किसी को मुसलमान होता देखते और दीन इस्लाम पर अमल करता देखते, तो खुशी से कहते कि इस दीन पर जमे रहो, तुम अच्छे दीन पे हो, तुम सही कर रहे हो। तो जब लोग उनसे कहते कि अच्छा हमारा ये काम तो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप खुद क्यों नहीं आते, इसका कोई जवाब ना होता। हालांकि उसका जवाब था, और वो क्या था कि वो नफ्स की ख्वाहिशों से मغلوب थे, उनको अपनी कुर्सी की फिक्र थी, अपनी लीडरशिप जाने नहीं देना चाहते थे, तो लिहाजा खुद अभी नहीं आते थे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज भी बहुत सारे लोग कुरान खुद नहीं पढ़ते, लेकिन दूसरों को पढ़ता देखें तो कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, हमारे लिए भी दुआ करें। तो आगे से क्या कहें कि आप हमारी दुआ की कबूलियत की कोशिश करें। दुआएं तो लगती हैं इंशाल्लाह, आप दुआ किया भी करें, लेकिन आज हमारे दीन का भी यही एक मिजाज लोगों का अमूमन बन गया कि खुद नेकी करने को मुश्किल समझते हैं, दूसरे को देख के जब सामने हो कभी खुशी से कभी खिसियाने हो के कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, तो आमीन कह दिया करें। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए कहा कि अतामुरूना नासा बिलबिर, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। अब यहाँ अलबिर से क्या चीज़ मुराद है, ज़रा सोचें, टैक्स के एतबार से बिल्कुल टैक्स के साथ रहे ना, किस चीज़ पे लोगों को खुश होते थे। यहाँ अलबिर से मुराद इस्लाम है, उम्मते मुहम्मदिया में शामिल होना था कि लोगों को तो इस्लाम में दाखिल होता देख कर खुश होते हो, वतन सोना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। अफला ताकिलून, क्या अकल नहीं है, समझ नहीं है। इससे फिर साइड से ये बात पता चलती है कि जब कोई बंदा किसी को नेकी की बात कहे तो खुद तो वो ज़्यादा मुस्तहिक है इस बात का कि खुद भी वो नेकी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि उनके होंठ और ज़ुबानें आग की कैंचियों से कुतरी जा रही थी। जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी उम्मत के दुनियादार वाइस हैं जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते थे मगर अपनी खबर नहीं रखते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस की ये रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत इब्ने इसाकर से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बास जन्नती बास दोस्तियों को जहन्नुम में देखकर पूछेंगे कि तुम आग में कैसे पहुंच गए, हालांकि हम तो बखुदा इन्हीं आमाल की बदौलत जन्नत में दाखिल हुए जो हमने तुमसे सीखे थे। तो अहले दोजख कहेंगे कि हाँ, हम जुबान से कहते ज़रूर थे मगर खुद अमल नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला इस चीज़ से महफूज रखे। अब इससे फिर एक छोटा सा मसला समझ में आने की ज़रूरत है, और वो क्या कि क्या फिर जब तक इंसान खुद अमल ना करे तो दूसरे को नसीहत ना करे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये बात होती है ना कि लोग कहते हैं कि अब चूंकि हम खुद अमल नहीं करते तो हम दूसरों को ना बताएं, तो सवाल उठता है कि क्या फासिक वाज़ और नसीहत नहीं कर सकता। तो इसका जवाब क्या है कि करेगा, क्यों कि देखिए कि बुरा काम करना, जैसे कोई मिसाल है कि खुद गलत काम करता है तो उसका एक अलग अमल है, और दूसरों को नेकी का हुक्म देना एक अलग नेकी है। एक नेकी तो आपने पहले ही छोड़ी हुई थी, अब दूसरी नेकी छोड़कर आप अपने आप को मजीद गुनाहगार तो नहीं करेंगे ना, करते रहिए, दूसरों को कहने की बरकत से आपकी भी दूर हो जाएगी। यहाँ असल जो चीज़ मना है ना वो क्या है कि इस बात को अपने लिए हुज्जत बना लेना कि अब मैं दूसरों को जो इतना कुछ कहता हूँ तो अब मुझे इस काम के करने की ज़रूरत क्या है, ये दुरुस्त नहीं है। जब एक बंदा किसी दूसरे को बुरे काम से रोकता है तो सबसे पहले उसके अपने अंदर टोक आती है। कुरान पाक में भी आता है कि बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, सूरह क़यामत की आयत है कि बल्कि इंसान अपने आप को तो ज़्यादा देखने वाला है, वलो अल्का माजीरा, और चाहे दूसरों के सामने कितने उजर बहाने पेश करे। तो लिहाजा एक नेकी छोड़ी हो तो दूसरी नेकी को छोड़ना ये दुरुस्त नहीं है। एक शख्स खुद नमाज नहीं पढ़ता तो क्या वो रोज़ा भी छोड़ दे, कबूल करना ना करना अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन कोई एक अमल से दूसरा नहीं छोड़ेगा। या खुद नमाज नहीं पढ़ता तो दूसरों को भी ना कहे, हाँ ये लग बात है कि उसकी बात में असर ही नहीं रहेगा। याद रखिए, ये एक अजीब सी तासीर देखी गई है कि जिस पे कहने वाले का अपना अमल नहीं होता उस पे दूसरे असर ही नहीं करते। और आज देखिए कोई तबलीग की कोई कमी है, इतनी कैसेट इतनी सीडीज इतने वाज इदारे मस्जिदें सब है, अमल क्यों नहीं हो रहा कि अल्लाह माफ़ करे कि कहने वालों के अंदर भी हो सकता है कि वो बात नहीं होगी। इसमें चंद अकवाल आपके सामने रखूंगी। इमाम मालिक हज़रत सईद बिन जुबैर का एक कॉल नकल करते हैं कि अगर हर शख्स ये सोच कर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ दे कि मैं तो खुद गुनाहगार हूँ, जब गुनाहों से पाक हो जाऊँगा तो लोगों को तबलीग करूँगा, तो नतीजा ये निकलेगा कि तबलीग करने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि कौन है ऐसा जो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो। सच है, कोई कह सकता है कि आज मैं गुनाहों से बिल्कुल पाक हो चुका हूँ, नहीं हो सकता ना। इसी तरह हज़रत हसन का एक इरशाद है कि शैतान तो यही चाहता है कि लोग इस गलत ख्याल में पढ़कर तबलीग का फरीज़ा छोड़ बैठें। ये इमाम कुर्तुबी की रिवायत है। इसी तरह एक और आलिम है, वो कहते हैं कि जब मुझे अपनी किसी बुरी आदत का इल्म होता है तो मैं इस आदत की मज़म्मत अपने वाज़ों में ज़्यादा करता हूँ ताकि इसकी बरकत से मेरी आदत छूट जाए। तो तो खुलासा कलाम क्या है कि अतामरून अन्नास बिल बिर्री व तंसौन अनफुसकुम का मतलब ये नहीं है कि बेअमल आदमी को वाज कहना जायज़ नहीं, बल्कि मतलब ये है कि वाइज को बेअमल नहीं होना चाहिए। दोनों में फ़र्क है। बेअमल होना ना तो वाइज के लिए जायज़ है ना गैर वाइज के लिए, यानी आप किसी को कहें ना कहें, जायज़ तो ये फिर भी नहीं है कि अमल ना करें। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब दूसरों को कहने वाले खुद अमल नहीं करते ना, तो फिर दूसरों को हुज्जत मिल जाती है कि देखिए फ़लां भी तो यही करते हैं, फ़लां के घरों में भी तो यही होता है। इसमें मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ कहती हूँ, और वो क्या कि उनकी ज़ात को तो आपने देख लिया, अब उनके घर और उनके बच्चों को ना देखें। किसी ने मुझे पूछा किसी का नाम लेकर कि फ़लां दर्स करती हैं या क्लासेस लेती हैं, तो मैं जाना चाहती थी लेकिन एक मेरे दिल में ख्याल आ गया तो मैं नहीं अब ज्वाइन कर रही उनकी क्लासेस, तो आप मशवरा दें। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगी कि मुझे किसी ने बताया कि उनके शौहर बैंक में काम करते हैं। किसी की भी बात है, कहीं की भी, इससे आपका कोई सरोकार नहीं ना मेरा। तो अब इस बात से मैं उनकी क्लासेस नहीं अब ले रही कि उनके तो शौहर बैंक में काम करते हैं। मैंने कहा कि देखिए मुझे नहीं पता जिनकी आप बात पूछ रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, लेकिन ये बताएं कि जब वो आपको पढ़ाती हैं तो वो उसमें क्या कहती हैं, और बैंक कैसा है, वो बिला सूद है क्या? आपने ये सारी रिसर्च कर ली? अगर वो आपको सही चीज़ पढ़ा रही है, बिलफर्ज उनका शौहर मिसाल करते भी हैं, आपको क्या पता वो रोज़ कितना रोती होगी उनके सामने, कितना दल जलती कुड़ती होगी। मियाँ ना माने तो क्या आप उसका कुरान छोड़ देंगी? आप देखें आपको क्या मिल रहा है। हाँ, अगर आप ये कहती हैं ना कि फ़लां कुरान पढ़ाते हुए ये कहता है कि इंटरेस्ट ले सकते हो, दे सकते हो, करो, तो फिर सोचने की बात है। तो लिहाजा दूसरों को देखना, उनके तो बच्चे ये पहनते हैं, उनके तो शादियों में ये होता है, उनके तो अभी भाई बहनों का ये, तो फिर तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम में से कोई मुत्तकीन की जमात में ना पैदा हुआ ना वहाँ रहेगा। इसलिए उसकी ज़ात को भी नहीं देखना चाहिए, कभी मत देखिए, सिर्फ़ अल्लाह के दीन को देखें। उसकी ज़ात बेहतरीन, अल्लाह के नबी की ज़ात बेहतरीन उसवे हसन है। तो लिहाजा अगर किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ दिखे तो उसको छूट दिया जाए और उस बात को ले लिया जाए जिसकी समझ आती है। बहरहाल अब आगे देखिए, अगली आयत बहुत ही खूबसूरत है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ इन लोगों को ये हुक्म दिया, और वो क्या था? वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और मदद चाहो सब्र से और नमाज से। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशईन, और बेशक ये बहुत भारी है मगर आजजी करने वालों के ऊपर, यानी आसान है। कौन होते हैं आजजी करने वाले? उनका तज़किरा आयत 46 में, अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, वो लोग जो ये गुमान करते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो इसी की तरफ लौटने वाले हैं। दो आयतें हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और अगर आप कुरान की तफसीर की क्लास में ना होते तो इन आयतों की रोशनी में 1 घंटा सब्र पे बात हो सकती थी, और शायद 2 घंटे नमाज पे बात हो सकती थी और खुशू पे हो सकती थी, लेकिन आम दरसों में तो ये अंदाज़ दुरुस्त है। आपको कहीं भी सब्र पे दर्स देना है, नमाज पे देना है, आप इन आयतों को लें और सब्र और नमाज पे बात करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो लोग कुरान की क्लास में स्टूडेंट बन के बैठे होते हैं, उनको सिर्फ दर्स की नौइयत से बताने की बजाय टेक्स्ट को साथ ले के बताना और उसके मुताबिक तफसीर बतानी चाहिए, ताकि वो उन आयतों को सही तौर पर समझें। इसलिए इस मौके पर ना हम सब्र पर बात करेंगे, ना हम नमाज पे ज़्यादा बात करेंगे। इनकी बात तब होगी जहाँ ये बराह रास्त टॉपिक होगा। हम हमेशा आयतों की रूह को लेंगे कि यहाँ किस टेक्स्ट में आई हैं। तो चूँकि ये आयतें चल रही हैं पीछे उलमाए यहूद के नाम पे, हम पीछे से देखते जा रहे हैं। उलमाए यहूद के अंदर 2 बुराइयाँ आ चुकी थी, और हर दीन वाले के अंदर इन 2 बीमारियों का आना बहुत आसान होता है, और बास दफ़ा तो पता भी नहीं चलता। और इंसानों में ये दोनों चीज़ें होती हैं, लिख लीजिए, एक है हुब्बे माल और एक है हुब्बे जाह। हुब्बे माल है लव ऑफ मनी, दुनिया, और हुब्बे जाह है जाह, यानी कैरियर, स्टेटस, मेरी कुर्सी, मैं फलां, मैं सदर, मैं वजीर, मैं फलां मेंबर। ये 2 बुराइयां कसरत से पैदा हो चुकी थी उलमाए यहूद में, माल के हरीस हो चुके थे, और साथ ही साथ उनके अंदर लीडरशिप बहुत थी, और पीछे मैं ये अर्ज़ कर चुकी कि अल्लाह के नबी को ना मानने में या उनको वेरीफाई ना करने में एक बहुत बड़ी रुकावट उनकी ये मजबूरी थी कि अगर हमने इस नबी की बात मान ली तो हमारी लीडरशिप चली जाएगी, हमें इसके बराबर पे आना पड़ेगा या इसको अपने से ऊपर लाना पड़ेगा, लिहाजा हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने दीन को बदलना पसंद कर लिया, लोगों को दीन से महरूम करना पसंद कर लिया, हक को बातिल और बातिल को हक में मिला लिया, लेकिन खुद दीन के ऊपर ना आए। उसकी बड़ी वजह क्या थी? माल की मोहब्बत और जाहत की मोहब्बत। अल्लाह ने यहाँ इन दोनों बीमारियों का इलाज बताया। इन दोनों बीमारियों का इलाज किस में है? नंबर एक, वस्ताइनु बिस्सब्र, सब्र। सब्र में इलाज है इनकी हुब्बे दुनिया का, जो हुब्बे माल मैंने कहा ना आपको, माल की मोहब्बत का इलाज सब्र में। कैसे? अभी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और नमाज से मदद तलब करने में हुब्बे जाह का इलाज है, क्योंकि नमाज क्या है? आजजी सिखाती है। जिस बंदे में आजजी आ जाएगी, जो अल्लाह के आगे झुक जाएगा, खुदगर्जी निकल जाएगी उसके अंदर से, तकब्बुर निकल जाएगा, दूसरों के हकूक़ को पामाल करना, हवस इक्तदार, अपने नाम को बचा लेना और अल्लाह का दीन कुर्बान कर देना, नतीजा क्या होगा कि वो बंदा फिर अपनी नमाज के ज़रिए दूसरों के लिए अच्छा बन जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा वस्तईनु बिस्सब्र, सब्र के साथ मदद तलब करो। सवाल पैदा होता है कि सब्र क्या होता है? सब्र के इतने एंगल हैं कि अगर मैं एक जुमला बोल दूँ कि पूरे का पूरा दीन सब्र है। कैसे? क्या एक अल्लाह पे एक बंदा किफ़ायत कर सकता है अगर सब्र ना हो? दिल तो चाहता है रंग रौनक वाले खुदा माने जाएं। आपको गैर अल्लाह के दर तो इतने चमकते दमकते दिखते हैं, आप लोगों के बुत और उनके मंदिर देखिए, इतनी उसमें रंग रौनक होती है कि दिल खुद ही खिंचता है उस तरफ। जितनी रसूमात शिर्क के नाम पे होती है उसमें, खाना पीना खुशबुआत और क्या कुछ है। सब्र होता है जब एक अल्लाह पे आते हैं। क्या सब्र ना हो तो नबी सल्लम की सुन्नतों पे अमल हो सकता है? अगर सब्र ना हो तो क्या रिश्तेदारों को वन साइडेडली उनके हकूक दिए जा सकते हैं? लोग आपसे बुरा करें, आप उनसे अच्छा कर सकते हैं अगर सब्र ना हो? क्या अपने ही कमाए हुए माल में से ज़कात दी जा सकती है अगर सब्र ना हो? बहादुरी से जाके लड़ा जा सकता है अगर सब्र ना हो? आधी रात को उठा जा सकता है अगर सब्र ना हो? आप इसको फैलाते जाएं, इसी सब्र का नाम इस्तकामत बन जाएगा, इसी सब्र का नाम बहादुरी, शुजात, कनात, सब कुछ बन जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो जो मिल गया उस पे सब्र करो। क्यों नाजायज़ तरीक़ों से कमा के लोगों को दीन बदल के बताते हो ताकि तुम माल कमा सको? बातिल माल लेते थे ना, नजराने वसूल करते थे, उनको कबूल करके वो चीज़ें, तभी खुशी होती थी। नतीजा हुआ कि वो दीन को बदलने वाले हो गए। याद रखिए कि हुब्बे माल के कुछ नताइज होते हैं, चार नताइज हैं जो हर बंदा अपनी ज़ात में देख सकता है। अगर हमारे अंदर इन चार में से कोई एक भी चीज़ है तो समझ लें कि हम माल की मोहब्बत का शिकार हैं। पहली चीज़ पैदा होती है कंजूसी और बुखल। जितना माल से आप मोहब्बत करेंगे उतना आपका दिल घुटेगा। इससे नतीजा क्या निकलता है? जब लीडर्स में ये चीज़ आ जाती है ना, तो उसका नतीजा क्या होता है कि कौम को नुकसान होता है। सारा माल अपनी ज़ात को तो मिल जाता है, अपने इर्द गिर्द वालों को तो मिलता है, और जिस मकसद के लिए वो माल जमा किया होता है उसके लिए वो नहीं मिलता। लिहाजा ऐसे शख्स को लोग माशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखते। यानी किसी ने बड़ा ही बुरा कमेंट दिया जो मुझे इंतहाई तकलीफ़ हुई, कि लोग मस्जिदें इसलिए बुलाते हैं कि मस्जिद बना के अपने रिश्तेदारों को वीज़े इशू करवा के बुला सके। ये किसी का कमेंट था कि आज के दौर में दीन भी खेल बन गया है कि हर बंदा अपने इर्द गिर्द वालों को नवाजता रहता है। तो ये जुमला असल में इसी निशानी की बात है ना, कि जब एक बंदे के हाथ में अथॉरिटी आ जाए और अगर बिलफर्ज उसका मिसयूज़ करता है, नतीजा क्या होता है कि फिर वो बदनाम हो जाता है। दूसरी बुराई जो पैदा होती है वो खुदगर्जी पैदा होती है। जो माल की हवस को पूरा करने के लिए उसे चीज़ों में मिलावट, नाप तोल में कमी, रिश्वत लेने, मकर, फरेब, दगा, धोखा, इस तरह के हीले सिखाती है कि उसकी तिजोरी तो माल से भरती रहती है और दूसरों का खून उछड़ता जाता है। और नतीजा क्या होता है? सरमायादार और मजदूर के झगड़े शुरू हो जाते हैं। और जैसे आज हमारे यहाँ हो रहा है कि अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है, इससे भी सोसाइटीज़ टूटती हैं। तीसरा एक नतीजा जो माल से मोहब्बत का निकलता है, और वो क्या है कि ऐसे शख्स को कितना ही माल क्यों ना मिल जाए, मज़ीद माल कमाने की धुन सवार होती है, हत्ता कि अपने आराम और तफरीह के मौके को भी ज़ाया कर देता है, मशीन बन के काम करता है, बीवी बच्चों को एंजॉय नहीं कर सकता, घर बड़े प्यार से बनाए थे उनमें रह ही नहीं रहे क्योंकि वो और माल कमाना चाहता है। नतीजा क्या होता है कि वो माल का कमाना उसके दीन का नुकसान होता है, नमाजें जाने लगती हैं। चौथा एक नतीजा क्या होता है कि ऐसे शख्स के सामने हक बात ख्वाह कितनी ही रोशन होकर सामने क्यों ना आ जाए, मगर वो ऐसी बात को कबूल करने की हिम्मत ही नहीं करता जो उसके माल की मोहब्बत से टकराए। नतीजा क्या आता है कि उसको पता है सूद हराम है, लेकिन क्या करूं, माल बढ़ाना है, लेके रहेंगे। उसको पता है धोखा गलत है, लेकिन करेंगे। नतीजा क्या कि पूरे मुआशरे का अमन चैन बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ने लीडर्स को कहा कि देखो, अगर तुम्हें अपने ऊपर सब्र करना मुश्किल लग रहा है ना, वाकई मुश्किल लग रहा है, तुम्हारे अंदर ये बीमारियां आ चुकी हैं, अगर तुम हुब्बे माल और जाह के गलबे से ईमान लाने से दूर हो रहे हो, तो जाओ वस्ताईन उबे सब्री वसला, नमाज और सब्र के साथ मदद तलब करो। सब्र से हुब्बे माल घट जाएगी और नमाज से हुब्बे जाह घट जाएगी, और नुकसान से जो अंधे होकर बहरे होकर दीन को ज़ाया कर रहे हो, इसमें कमी आ जाएगी। तो लिहाजा हम में से किसी को अगर अपने अंदर ये दोनों में से कोई एक या दोनों बुराई दिखती है, तो इसका इलाज अल्लाह से मदद मांगे। है बड़ा मुश्किल, दोनों मुश्किल है, मगर इल्ला लिल खाशीन, आजजी करने वाले, झुके हुए लोग, उनको नमाज़ पढ़नी आसान लगती है। देखिए, आजजी आती है तो झुकने को खुद ही दिल चाहता है ना, और जिसके अंदर अकड़ हो, जिसकी गर्दन अकड़ी हुई हो, उसको तो फिर ये बहुत मुश्किल लगता है। और अल्लाह ताला ने खुशू को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया है सूरत अल मोमिनून की पहली आयतों में कि कद अफलहल मोमिनून, और उससे आगे आता है, वहाँ इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ खुलासे के तौर पे देख ले कि खुशू किस कैफियत का नाम है, दिल के सुकून का नाम है। पहली चीज़, इनकिसारी, जो अल्लाह की अजमत और उसके सामने अपनी हकारत के इल्म से पैदा होती है, इसके नतीजे में इताअत आसान होने लगती है। फिर जब इसके असरात जिस्म पर दिखते हैं ना, तो फिर इंसान बज़ाहर बड़ा बादब मुतवाजे ऐसा दिखता है कि जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए। दो लफ्ज़ आप सुनते हैं, एक होता है खुशू और एक है खुदू। उर्दू में बोलते हैं खुशू व खुदू से नमाज़ पढ़नी, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। खुशू क्या होता है, दिल का झुकना, और खुदू होता है जिस्म से असर दिखे, आंखें झुका के बात करता है, उसके पोस्चर में, उसके चाल में, उसकी ढाल में नरमी होती है, मस्नूई किस्म की चीज़ नहीं, हकीकत में उसके अंदर झुकाव होता है। और क़यामत के दिन तो ये होना ही है। अल्लाह ताला कहते हैं खशियत अल अस्वातु, उस दिन आवाज़ें सारी दब जाएंगी। एक जगह आता है फदल्लता नाकुहुम लहा खादईन, क्यों, पस उनकी गर्दनें उसके सामने झुक जाएंगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास बंदे के अंदर खुशू पैदा करता है, और उसके नतीजे में फिर एक इंसान अपने आप को रोकता है। नमाज भी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कल अल्लाह के सामने मैदाने महशर में खड़ा होना है। इसीलिए कहा अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, ये बात यहाँ क्यों आ गई, बता दिया कि जिस तरह मैदाने महशर में खड़े हो के अल्लाह के आगे झुकोगे ना, इस सूरत में नमाजों में झुक खड़े हो जाओ। अगर सोचिए, हम में से अगर कोई बंदा अपनी नमाज ये सोच के पढ़ लेना कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, तो उसके बाद फिर वो नमाज बेहतरीन होगी। एक बहुत अच्छे इमाम है किसी मस्जिद में, तो हमेशा जब भी नमाज के लिए होते हैं तो उससे पहले, ऑफ कोर्स शुरू में नहीं, लेकिन पहले वो कहते हैं कि ऐसे नमाज पढ़ो कि जैसे आपकी आखिरी नमाज है, और ये एहसास अल्लाह के सामने पेश करने का, अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ताल्लुक देखा आपने, कहाँ अल्लाह ने यहाँ के जाए नमाज से उठा के मैदाने महशर में बिछा दिया आपका जाए नमाज, के बस ऐसी नमाज पढ़ो कि अभी इसके बाद फैसला सुनाया जाना है कि ये फलां जन्नत में जाने वाली है और फलां जहन्नुम में जाने वाली है। और इस पे बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर आगे होती रहेंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
या बनी इस्राइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफ बिअहदिकुम وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن